एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन और विचारों की दुनिया में कदम रख रहे हैं जिनकी कहानी अपने आप में प्रेरणा का दूसरा नाम है, ओपरा गेल विन्फ्रे।
हाँ ओपरा, और देखिए ये सिर्फ वो कहानी नहीं है कि कोई कैसे शून्य से शिखर तक पहुंचा।
बिल्कुल नहीं,
ये कहानी है गहरे दर्द को एक मकसद में बदलने की। ये कहानी है लचीलेपन की, और शायद सबसे बढ़कर अपनी सच्चाई के साथ पूरी प्रामाणिकता से जीने की हिम्मत की।
सही कहा। और आज हम उनके जीवन के इसी ताने बाने को, उनकी सोच को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे, जो कुछ उन्होंने कहा है, लिखा है या जिया है उसी के आधार पर।
बिल्कुल।
मिसिसिपी के एक बहुत ही गरीब ग्रामीण इलाके से उठकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली मीडिया हस्तियों में शामिल होना, अरबपति बनना, एक सांस्कृतिक प्रतीक बन जाना, ये सफर सचमुच किसी अजूबे जैसा लगता है।
सोचना भी मुश्किल है ना, कि जिस बच्ची ने शायद आलू की बोरियों से बने कपड़े पहने हों, वो एक दिन दुनिया भर के लोगों की सोच पर इतना गहरा असर डालेगी।
और आज के जमाने में जब कई बार लगता है कि प्रामाणिकता की, गहरे मानवीय जुड़ाव की कमी है,
हाँ
तब उनकी कहानी शायद और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है।
बिल्कुल, ये दिखाती है कि अपनी कमजोरियों को, अपनी सच्चाई को स्वीकार करके भी दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि बाहरी हालात आपकी अंदरूनी ताकत को हमेशा तय नहीं करते।
तो चलिए इस असाधारण जीवन यात्रा को शुरू से देखते हैं। उनके शुरुआती साल, वो सच में संघर्ष और किसी अनदेखी कृपा का एक अजीब सा मेल लगते हैं।
हाँ, जन्म हुआ मिसिसिपी के कॉसियोस्को में। माता पिता अविवाहित थे, किशोर थे, और बचपन बेहद गरीबी में।
जैसे आपने कहा, आलू की बोरियों के कपड़े, भुट्टे के रेशों से बनी गुड़िया, खिलौने भी ऐसे थे।
हाँ, लेकिन इन्हीं मुश्किल हालातों के बीच उनकी दादी हैटी मेली एक मजबूत सहारा बनी। वो अनुशासन प्रिय थी, इसमें कोई शक नहीं, पर स्नेह से भरी हुई थी।
और उन्होंने ही ओपरा को 3 साल की उम्र से पहले पढ़ना सिखा दिया था।
बिल्कुल, साक्षरता का ये तोहफा जैसे उनके पूरे जीवन का प्रतीक बन गया। शब्द और कहानियां वो उनके लिए पलायन का जरिया बने, समझ का, और आखिरकार आजादी का भी।
और चर्च उनका पहला मंच बना है ना, जहां वो बाइबल की आयतें सुनाती थीं।
हाँ, और इतनी प्रभावशाली थीं कि लोग उन्हें द लिटिल स्पीकर कहने लगे थे। शायद वहीं से उनकी वो संवाद की अद्भुत क्षमता पनपनी शुरू हुई।
लेकिन ये स्थिरता ज्यादा दिन नहीं रही। फिर वो मिलवॉकी चली गई अपनी माँ वर्णिता ली के पास रहने।
और मिलवॉकी का दौर, वो काफी उथल पुथल भरा था। वहां शायद उन्हें वो ध्यान और स्नेह नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी।
और यही उनके जीवन का वो सबसे भयानक अंधकारमय अध्याय शुरू हुआ।
हाँ, 9 साल की उम्र से कई सालों तक परिवार के ही कुछ पुरुष सदस्यों और एक पारिवारिक मित्र ने उनका यौन शोषण किया।
उफ।
इस अनुभव ने उनके मन पर बहुत गहरा आघात छोड़ा। शर्मिंदगी, खुद को जैसे मैली चीज महसूस करना।
ये सोचना भी भयानक है कि एक बच्ची पर क्या गुजरी होगी। हम जानते हैं कि बाद में यही दर्द उनकी सहानुभूति का स्रोत बना, लेकिन उस वक्त
तो ये असहनीय रहा होगा। और फिर किशोरावस्था में गर्भवती होना और जन्म के तुरंत बाद अपने बेटे को खो देना, ये शायद उनके जीवन के सबसे निचले बिंदु थे।
बिल्कुल, और यही एक बड़ा, शायद सबसे निर्णायक मोड़ आता है।
हाँ, 13 साल की उम्र में कुछ हद तक उनके व्यवहार की वजह से उन्हें नैशविल, टेनेसी भेज दिया गया, अपने पिता वर्नॉन विन्फ्रे के पास।
और ये कदम उनके जीवन को बदलने वाला साबित हुआ।
बिल्कुल, वर्नॉन विन्फ्रे ने उन्हें वो चीजें दी जिनकी उस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक ढांचा, अनुशासन और शिक्षा पर जबरदस्त जोर।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि उनके पिता रोज उनसे किताबों की रिपोर्ट मांगते थे। हर दिन एक नया शब्द सीखना अनिवार्य था।
सोचिए, इसने ओपरा को न सिर्फ बाहरी स्थिरता दी, बल्कि अंदर से भी उन्हें एक मजबूत आधार मिला।
और फिर हाई स्कूल में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। भाषण, बहस प्रतियोगिताएं जीती, सबसे लोकप्रिय छात्रा चुनी गई,
और टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए पूरी स्कॉलरशिप भी हासिल की। हालांकि अपने आत्ममूल्यों को लेकर उनका संघर्ष शायद तब भी पर्दे के पीछे जारी रहा होगा।
उनका पेशेवर सफर तो कॉलेज के दिनों में ही शुरू हो गया था, है ना?
हाँ, नैशविल के WTVF टीवी में। वो वहां सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत महिला न्यूज एंकर बनी।
वाओ।
कैमरे के सामने वो बहुत सहज थी, दर्शकों से तुरंत जुड़ जाती थी, लेकिन नस्लवाद, लिंगवाद, इन सब का भी सामना करना पड़ा।
और वो अंदरूनी कश्मकश भी रही होगी खबरों की तटस्थता और अपनी गहरी सहानुभूति के बीच।
बिल्कुल, वो अक्सर दुखद खबरें पढ़ते हुए रो पड़ती थीं। ये उनके लिए मुश्किल था।
और ये कश्मकश बाल्टीमोर में और बढ़ गई। वहाँ वो WJZ टीवी में न्यूज एंकर बनी।
हाँ, और वहाँ उन्हें उनकी भावनात्मक प्रस्तुति के लिए आलोचना झेलनी पड़ी। कहा गया कि वो बहुत ज्यादा भावुक हैं खबरों के लिए।
और नतीजा ये हुआ कि उन्हें एंकरिंग से हटाकर सुबह के एक कम चर्चित टॉक शो पीपल आर टॉकिंग में भेज दिया गया। ये तो करियर के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा।
यकीनन, उस वक्त तो ये एक अपमानजनक नाकामी जैसा ही लगा होगा। लेकिन कई बार जो चीज नाकामी लगती है
वो असल में एक मौका होती है।
बिल्कुल, यही पदावनति, ये डिमोशन असल में उनके लिए एक वरदान साबित हुआ, एक अहा मोमेंट जैसा वो कहती हैं।
कैसे?
क्योंकि समाचार की बंदिशों से आजाद होकर वो आखिरकार खुलकर अपनी असलियत दिखा सकती थीं, अपनी सहानुभूति, अपना जुड़ाव। यही उन्हें अपना सच्चा काम मिला, लोगों के बीच प्रामाणिक मानवीय बातचीत को बढ़ावा देना।
और फिर आया शिकागो का बुलावा 1984 में, AM शिकागो की मेजबानी।
हाँ, और वो शो उस समय रेटिंग्स में लगभग सबसे नीचे था।
लेकिन कुछ ही महीनों में ओपरा के बेबाक, ऊर्जावान और सहानुभूति भरे अंदाज ने शो को कहां से कहां पहुंचा दिया।
यहां तक कि उस जमाने के टॉक शो किंग फिल डोनाह्यू को भी पीछे छोड़ दिया। ये कमाल था।
एक साल के अंदर ही शो का नाम बदलकर द ओपरा विनफ्रे शो कर दिया गया और 1986 में ये पूरे अमेरिका में सिंडिकेट हो गया।
सफलता तो जैसे तुरंत मिली, लेकिन ओपरा का सफर यहीं रुका नहीं। शुरुआती दिनों में शो थोड़ा सनसनीखेज विषयों पर था, जिसे बाद में ट्रैश टीवी भी कहा गया।
हाँ, लेकिन वो जल्द ही इस फॉर्मेट से कह सकते हैं ऊब गई या शायद असहज हो गई।
बिल्कुल, खासकर एक एपिसोड के बाद जिसमें नफरत फैलाने वाले समूह KKK के सदस्य थे। उन्हें शिद्दत से महसूस हुआ कि उन्होंने अपने मंच का गलत इस्तेमाल किया, नफरत को आवाज दी, रोशनी को नहीं।
और इसके बाद आया वो बड़ा बदलाव 90 के दशक के मध्य में।
हाँ, उन्होंने जानबूझकर शो की दिशा बदली, उसे प्रेरणादायक, सशक्त बनाने वाली सामग्री की ओर मोड़ा। लिव योर बेस्ट लाइफ वाला दौर।
ये सिर्फ प्रोग्रामिंग का फैसला नहीं था, है ना, ये उनके अपने व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास का भी आईना था।
सटीक कहा, ये उनका सार्वजनिक विकास था। और फिर 1996 में ओपरा बुक क्लब का लॉन्च।
वो तो एक सांस्कृतिक घटना बन गया।
बिल्कुल, इसने न सिर्फ गंभीर साहित्यिक किताबों को फिर से चर्चा में ला दिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि ओपरा की सिफारिश का क्या मतलब है। किसी भी किताब को रातों रात बेस्ट सेलर बना सकती थी वो।
पढ़ने की ताकत में उनका जो यकीन था, ये उसकी पुष्टि थी।
और फिर तो उन्होंने अपना पूरा मीडिया साम्राज्य खड़ा किया, हार्पू स्टूडियोज, जिससे उन्हें अपने शो का पूरा नियंत्रण मिला।
ओह, द ओपरा मैगजीन।
हाँ, और द कलर पर्पल जैसी फिल्मों में अभिनय और निर्माण भी।
लेकिन 25 साल के शानदार सफर के बाद 2011 में द ओपरा विनफ्रे शो को बंद करने का फैसला, ये भी एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था।
बहुत बड़ा। उन्हें लगा कि वो इस फॉर्मेट में जो कहना चाहती थीं कह चुकी हैं, अब आगे बढ़ने की, विकसित होने की जरूरत है, भले ही अगला रास्ता साफ न दिख रहा हो।
और इसके बाद आया OWN, ओपरा विनफ्रे नेटवर्क, जिसके शुरुआती साल काफी मुश्किलों भरे रहे।
हाँ, सार्वजनिक रूप से संघर्ष करना पड़ा। ये उनके करियर की उन गिनी चुनी असफलताओं में से एक था जिसे सबने देखा।
इसने जरूर उन्हें थोड़ा हिलाया होगा, अपनी रणनीति पर फिर से सोचने पर मजबूर किया होगा।
बिल्कुल, और उन्होंने चुनौती स्वीकार की, खुद CEO और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर की भूमिका संभाली और धीरे धीरे नेटवर्क को मुनाफे और सफलता की पटरी पर ले आई।
ये नेतृत्व और हार ना मानने का एक और सबक था।
हाँ, और आज वो जीवन के एक ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ चिंतन, कृतज्ञता, उद्देश्य और सेवा पर ज्यादा ध्यान है। दक्षिण अफ्रीका में लड़कियों के लिए जो उन्होंने ओपरा विनफ्रे लीडरशिप एकेडमी OWCA खोली है,
उसे वो अपनी सबसे बड़ी विरासत मानती है।
बिल्कुल, जैसे मिसिसिपी की वो छोटी लड़की आखिरकार अपनी मंजिल पाकर शांत हो गई है।
उनके इस पूरे जीवन और काम को अगर हम देखें तो एक स्पष्ट दर्शन, एक जीवन दृष्टि उभर कर आती है। ऐसा लगता है कुछ खास सिद्धांत हैं जो उन्हें हमेशा राह दिखाते रहे।
हाँ जरूर, ये इरादे एक तरह की आध्यात्मिक जागरूकता और निजी जिम्मेदारी पर आधारित दर्शन है। इसके कुछ मुख्य सूत्र हैं,
जैसे कि
पहला, जिसे वो कहती हैं, ब्रह्मांड फुसफुसाहट में बोलता है।
मतलब
जीवन हमें लगातार संकेत देता है, अगर हम इन धीमी आवाजों, इन फुसफुसाहटों पर ध्यान नहीं देते
तो आवाज तेज हो जाती है।
हाँ, वो कंकड़ बन जाती हैं, फिर भी ना सुने तो ईंटें पड़ती हैं और आखिर में पूरी ईंट की दीवार खड़ी हो जाती है।
बाल्टीमोर वाला डिमोशन शायद एक ईंट थी।
हो सकता है, और OWN का शुरुआती संघर्ष एक पूरी दीवार। पर उनका मानना है कि ये मुसीबतें सजा नहीं हैं, बल्कि दिशा सुधारने का संकेत हैं, रास्ता बदलने का इशारा।
ये बहुत दिलचस्प नजरिया है चुनौतियों को देखने का। और दूसरा सिद्धांत?
इरादा ही सब कुछ है। वो इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि हम जो भी करें उसके पीछे हमारा इरादा क्या है, वो नेक और स्पष्ट होना चाहिए।
उनके शो का बदलाव इसी से जुड़ा था।
बिल्कुल, सनसनीखेज से ज्ञानवर्धक बनना इसी इरादे से प्रेरित था कि वो दुनिया में अच्छाई के लिए एक शक्ति बने। उनका मानना है कि आपका इरादा ही आपकी हकीकत को रचता है।
और तीसरा सिद्धांत तो उनके अपने गहरे अनुभवों से निकला लगता है, घाव को भरना या कुछ ऐसा।
हाँ, अपने घाव को ज्ञान में बदलो। उनका मानना है कि आपका सबसे गहरा दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।
जैसे उनका अपना यौन शोषण का अनुभव।
हाँ, उसी अनुभव ने उन्हें वो असाधारण सहानुभूति दी जिससे करोड़ों दर्शक उनसे जुड़ पाए। उन्हें लगा कि कोई है जो उन्हें सच में समझता है, अपनी कमजोरियों को, चाहे वो बचपन का आघात हो या वजन के साथ उनका सार्वजनिक संघर्ष। खुलेआम स्वीकार करके उन्होंने इसे शर्मिंदगी की बजाय जुड़ाव और ताकत का जरिया बना दिया।
ये बहुत शक्तिशाली बात है। और चौथा सिद्धांत व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में है, है ना?
सही कहा।
आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, वो नस्लवाद या गरीबी जैसी सामाजिक बाधाओं को नकारती नहीं है, लेकिन उनका जोर इस बात पर रहता है कि आखिरकार हमें अपने जीवन की बागडोर खुद संभालनी होगी।
मतलब जो हुआ सो हुआ, पर अब आगे क्या करना है ये हमारे हाथ में है।
बिल्कुल, आपके साथ अतीत में जो हुआ उसके लिए शायद आप जिम्मेदार ना हो, लेकिन आप उस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं इसके लिए आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। यही उनके लिव योर बेस्ट लाइफ संदेश का मूल है।
ये जानना भी दिलचस्प होगा कि उनकी अपनी प्रेरणाएं, उनके मोटिवेशंस वक्त के साथ कैसे बदले। क्या वो हमेशा से ही सेवा और विरासत बनाने के बारे में सोचती थी?
नहीं, ये एक विकास यात्रा रही है। शुरुआत में जाहिर है प्रेरणा थी बस टिके रहना,
सर्वाइवल।
हाँ, सर्वाइवल, गरीबी से बाहर निकलना, खुद को साबित करना, उस अतीत से दूर भागना जिसने उन्हें बताया था कि वो किसी लायक नहीं है।
फिर जब सफलता मिली, पहचान बन गई, तब मध्य करियर में प्रेरणा बदली। अब जोर जुड़ाव और सेवा पर आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका मंच सिर्फ मशहूर होने के लिए नहीं है, ये दर्शकों की सेवा करने, उनके जख्मों को भरने, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए है।
और अब जीवन के इस पड़ाव पर
अब प्रेरणा विरासत और आत्मसंतुष्टि की है। एक स्थायी विरासत छोड़ जाना, सशक्तिकरण की विरासत, दूसरों को ऊपर उठाने की।
इतनी उतार चढ़ाव भरे जीवन में कुछ पल ऐसे जरूर रहे होंगे जिन्होंने वाकई उनकी दिशा ही बदल दी। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो कौन से तीन मोड़ सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी लगते हैं?
हाँ, कई मोड़ आए, लेकिन तीन खास तौर पर बहुत अहम लगते हैं। पहला, निस्संदेह, बाल्टीमोर में 1978 में हुआ वो डिमोशन,
न्यूज एंकर से टॉक शो होस्ट बनना।
हाँ, जैसा हमने बात की, ऊपर से देखने पर ये एक बड़ी पेशेवर नाकामी थी, शायद सार्वजनिक शर्मिंदगी भी,
लेकिन असल में इसने उन्हें उस दायरे से आजाद कर दिया जहां उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी सहानुभूति को दबाना पड़ रहा था।
बिल्कुल, इसने दिखाया कि उनकी असलियत, उनका वो भावनात्मक जुड़ाव, उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी महाशक्ति थी। इसी मोड़ ने उनके पूरे भविष्य के करियर की नींव रखी।
और दूसरा मोड़, वो और भी ज्यादा निजी था शायद।
हाँ, और शायद उतना ही शक्तिशाली। 1986 में शो पर ही अपने बचपन के यौन शोषण का खुलासा करना,
जो कि पहले से तय नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मेहमान के कहानी सुनते हुए वो एकदम से भावुक हो गई और पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी आपबीती कह डाली।
उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत अभूतपूर्व घटना थी।
बिल्कुल, इसने मेजबान और दर्शक के बीच की वो अदृश्य दीवार जैसे गिरा दी। एक भरोसे और अपनेपन का ऐसा रिश्ता बना जो पहले कभी टीवी पर नहीं देखा गया था।
और इसने दिखाया कि अपनी कहानी कहना, अपनी कमजोरी जाहिर करना, शर्म की नहीं बल्कि ताकत की बात हो सकती है।
सही कहा, इसने अनगिनत लोगों को अपनी चुप्पी तोड़ने की हिम्मत दी होगी।
और तीसरा अहम मोड़,
वो था 90s के दशक के मध्य में चेंज योर लाइफ टीवी की तरफ उनका सचेत बदलाव, और उसके तुरंत बाद हुआ वो मशहूर बीफ मुकदमा।
अच्छा, हाँ, जब उन्होंने ट्रैश टीवी से हटकर ज्यादा गंभीर, आध्यात्मिक, आत्म सुधार वाले विषयों पर ध्यान देना शुरू किया।
हाँ, ये एक बड़ा जोखिम भरा फैसला था, और फिर 1996 में मैड गाव बीमारी पर एक एपिसोड के दौरान उनकी एक टिप्पणी।
इसने तो मुझे अब बर्गर खाने से पूरी तरह रोक दिया है।
बिल्कुल, इस टिप्पणी के बाद टेक्सास के कुछ पशुपालकों ने उन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। मामला काफी लंबा चला
और वो जीत गईं।
हाँ, और उस मुकदमे को जीतना सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, ये उनके सिद्धांतों की, उनकी आवाज के प्रभाव की जबरदस्त पुष्टि थी।
इसने उन्हें शायद और मजबूत किया।
बिल्कुल, एक जिम्मेदार और साहसी मंच का उपयोग करने की उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। इसने उन्हें सिर्फ एक मनोरंजन करने वाली हस्ती के बजाय एक भरोसेमंद मार्गदर्शक, एक शिक्षक के रूप में स्थापित कर दिया। शायद यहीं से उस ओपरा का सही मायनों में जन्म हुआ जिसे आज दुनिया जानती है।
ओपरा का जीवन हमें मुश्किलों से लड़ने, अपनी सच्चाई पर टिके रहने और यहां तक कि दर्द से भी कुछ सार्थक रचने के बारे में यकीनन बहुत कुछ सिखाता है। उनकी कहानी आम इंसानी अनुभवों से कैसे जुड़ती है?
कई स्तरों पर जुड़ती है। सबसे पहले तो गहले सदमे और मुश्किल हालातों से उभरना, चाहे वो शोषण हो, गरीबी हो या नस्ली भेदभाव।
उनकी कहानी उम्मीद देती है।
हाँ, कि शुरुआत कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान चाहे तो न सिर्फ उभर सकता है बल्कि फल फूल भी सकता है।
और बाहरी सफलता के बावजूद अंदर ही अंदर अपने आत्ममूल्य के लिए संघर्ष करना, ये एक ऐसी बात है जिससे शायद बहुत से लोग खुद को जोड़कर देख पाएंगे।
बिल्कुल, उनका खुलापन दिखाता है कि दुनिया की नज़र में सफल होना अंदरूनी शांति की गारंटी नहीं है। दुनिया की उम्मीदों और अपनी असलियत के बीच संतुलन खोजना एक लगातार चलने वाली यात्रा है।
और वो कमजोरियों को स्वीकार करने की ताकत।
हाँ, चाहे वो शोषण का खुलासा हो या वजन के साथ उनका सार्वजनिक संघर्ष, ये दिखाता है कि अपनी नाजुकता को जाहिर करना हमें अलग थलग नहीं करता बल्कि एक दूसरे से जोड़ता है। ये बहुत मानवीय है।
और वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी वाली बात भी बहुत अहम लगती है।
हाँ, कि जीवन की चुनौतियों पर हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेना और अपनी गलतियों से सीखना।
जैसे OWN के शुरुआती संघर्ष या जेम्स फ्रे विवाद जैसी सार्वजनिक भूलें।
हाँ, उनसे सीखना और आगे बढ़ना। और आखिर में स्थिर रिश्तों और मार्गदर्शन का महत्व। उनके पिता माया एंजेलो जैसी मार्गदर्शक, गेल किंग जैसी दोस्त, इन लोगों ने उनके जीवन को संवारने में अहम भूमिका निभाई। ये भी एक जरूरी सबक है हम सबके लिए।
तो अगर हमें ओपरा विनफ्रे के जीवन और दर्शन से तीन सबसे जरूरी बातें निकालनी हो जिन्हें हम याद रख सकें, तो वो क्या होंगी? पहली शायद कोई भावनात्मक सीख।
हाँ, भावनात्मक सीख ये है कि हमारे सबसे गहरे जख्म, जैसे ओपरा का बचपन का सदमा, हमारी सबसे बड़ी सहानुभूति, जुड़ाव और अंदरूनी ताकत का स्रोत बन सकते हैं। अपनी कमजोरियों को जाहिर करना, जिसे अंग्रेजी में वल्नरेबिलिटी कहते हैं, वो कमजोरी नहीं है
बल्कि जुड़ाव बनाने का एक जरिया है।
बिल्कुल, एक शक्तिशाली जरिया। जैसा वो खुद कहती हैं, अपने घावों को ज्ञान में बदलो।
और दूसरी एक बौद्धिक या वैचारिक सीख।
वैचारिक सीख ये है कि सच्ची और टिकाऊ सफलता के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे काम हमारे इरादों और मूल्यों के साथ मेल खाते हों। उद्देश्य संचालित काम या व्यवसाय न केवल सफल हो सकते हैं
बल्कि ज्यादा गहरा असर डालते हैं।
इसका सबूत है उनका वो मंत्र, इरादा ही सब कुछ है, यहाँ फिर याद आता है।
और अंत में एक सार्वभौमिक सीख जो हम सभी अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकते हैं।
सार्वभौमिक सीख ये है कि जीवन हमें लगातार सबक सिखाता रहता है। वो फुसफुसाहटें जिनका हमने जिक्र किया,
हमें बस सुनने की जरूरत है।
हाँ, असफलताएं या मुश्किलें असल में विकास के मौके हैं अगर हम उन्हें जागरूकता और सीखने की इच्छा के साथ देखें। व्यक्तिगत जिम्मेदारी मुश्किलों को आने से रोकने में नहीं है बल्कि उनके आने पर हम उन पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं इसमें है।
उनके शब्दों में कहें तो अपने जीवन को सुनो
और ये याद रखो कि आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं।
ओपरा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अपने जीवन की फुसफुसाहटों को कितनी ध्यान से सुन रहे हैं
और क्या हम में वो साहस है कि हम अपनी कमजोरियों या अपने घावों को अपनी अनोखी ताकत में बदल सकें? ये सवाल जरूर सोचने लायक है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।